दुनिया सुचार हो जाता है, ऐसे दिल नजुरता लगता है, नमाजें भी अच्छी हो जाती है, यानी फीलिंग्स चेंज होती है ना। इसी तरह बार दफा कभी गफलत के दिन होते हैं, बहुत ही खुशियां और हर वक्त फान फान, तो ऐसे लगता है कि नमाजों से रूह चली गई है। तो ये कुरान की आयतें क्या हमारे दिल पे असर डाल रही है? जी आप करें। और आप जब याद करके पढ़ेंगे ना नमाज में, तो उसकी मजा ही और है। जी आप इशरत मदद करिए। चलिए सब दुआ करें, दुआ करें जो भी मान है उन सबको सेहत दे। जी कंटिन्यू करें। जी इधर से कोई। जी आप प्रसन्न। मेरी बात सुनिए, इसकी तो भी हम तफसीर करेंगे ना, इसको तो भी हम सुनेंगे। चलिए आप देखिए कि हम ये सोच लेते हैं कि सूरत अल काहफ को सुनने के दौरान, यानी मैं भी और आप भी, आधी सूरत तो ऑलमोस्ट होने वाली हो गई है। अगर हम देखे आगे गोल बनाते हैं, दो सबक और हैं इसके पीछे हमारे पास आज के सबक के बाद। मैंने जरूर अपने दिल से पूछना है कि और कौन सी बात सुनकर तुम मानोगे। ठीक है, इंशाल्लाह इस सोच के साथ चलते हैं। सबक थोड़ा लंबा है तो मजीद वक्त हम नहीं यूज कर सकते डिस्कशन पे, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम एंड पे थोड़ी बात करेंगे। शुरू करते हैं सबक को। नहमतु हुवा नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फाउजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुयस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सबक नंबर 151, आयत नंबर 32 से 49, 59, सूरत का प्लस नंबर 152, आयत नंबर 32-59 सूरत अल काहफ। आयतों में जाने से पहले हम थोड़ा सा सबक का खुलासा करेंगे, और हमारा आज का समय में लंबा है, लेकिन पूरे सबक के अंदर से बुनियादी चीज एक ही निकलती है। इसका सूरत के बुनियादी थीम से बड़ा गहरा ताल्लुक है। थीम क्या था? दुनिया की मोहब्बत जो दजल बनकर इंसान को धोखा देती है। पीछे हमने एक मोमिन और एक मिस्कीन का फर्क देखा, और जन्नत और जहन्नम की सूरत में दो मुख्तलिफ इंजाम देखे। आज के सबक में इब्तिदा में एक वाकया है। दो दोस्त थे, दोस्त दो थे, दो ही बाग थे। अगर हम अपनी अकल से पूछे तो हम कहेंगे एक बाग एक का था, दूसरा बाग दूसरे का था, लेकिन हम देखेंगे कि अल्लाह की बात हमसे फर्क है। वो वाक्य के शुरू में हम बात करेंगे, लेकिन उस पूरे वाक्य से अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में रहने का तरीका सिखा दिया कि जिसको ज्यादा मिला है वो फख्र ना करे, और जिसको कम मिला है वो दुख ना करे। वजह क्या है? इसकी वजह क्या होती है कि जिसको ज्यादा मिला है वो भी इम्तिहान में है, नेमतों के उसको शुक्र करना है, और जिसको कम मिला है उसके ख्याल में उसको इम्तिहान किया कि वो सब्र करता नहीं। वह क्या आप कह सकते हैं कि इस वाक्य में उस हदीस की अमली तफसीर है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का मामला अजीब है, खुशी मिले तो शुक्र करता है, गम मिले तो सब्र करता है। और इसमें से हम देखेंगे कि जब इंसान को दौलत मेहनत के बगैर मिल जाती है ना, तो वो बाज दफा फिर छिछोरी हरकतों पर आ जाता है। फिर एक और चीज लफ्ज माशाल्लाह कहने की बरकतें क्या है वो आज के सबक में देखेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर उसके बाद अगली चीज क्या है जो आज के सबक में दुनिया की हकीकत, लाइफ इज अ फेडिंग शैडो, जिंदगी एक ढलता हुआ साया है। हम इन आयत की रोशनी में देखेंगे कि वो जिसके मिलने पे इतना खुश और जिसके छिलने पे इतने ज्यादा होते हैं हम काफी ज्यादा, जिसमें एक अहम टॉपिक है माल और बाकियात सालेहात कैसे बने। यानी आज के सबक का जो बुनियादी हम देखेंगे इससे ज्यादा वो बाकियात सालेहात पे देखेंगे, और इसी तरह से फिर इस दुनिया को खत्म होते हुए जब अल्लाह ताला मिटाएगा इस दुनिया के खत्म होते किस सूरत में हम आगे जाएंगे, और उसके बाद फिर आमालनामे। आप देख रहे हैं कि मुसलसल सूरत बनी इसराइल से अब तक तीसरी चौथी बार आमालनामे का जिक्र है, और आगे आगे आप देखते ही जाएंगे। कुरान पाक जब ऊपर पीक पे जाने के बाद अब आगे जाएगा तो नामे अमाल का बहुत ज्यादा तस्करा होगा, और ये चीज इंसान को सेल्फ कॉन्शियस बनाती है। और फिर उसके बाद आदम और इब्लीस का किस्सा जो पहले भी हम तीन बार पढ़ चुके, यहाँ उसमें से हमें हल्का सा इशारा देकर ये बता दिया गया कि इब्लीस का मसला क्या था और उसने तकबर करके अपने लिए कितना नुकसान उठाया। जो कुफर उसने किया वही आज उसके वो बच्चे करते हैं जो दुनिया की दौलत को पाकर नशुक्री के रवैये अख्तियार कर लेते हैं, और फिर कुरान पाक का बार बार एक ही मौजू को मुख्तलिफ तरीके से पेश करना, इसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद हिदायत से रोकने वाले फैक्टर्स, वो क्या असबाब है कि जिनकी मौजूदगी हिदायत सामने मौजूद होने के बावजूद इंसान को हिदायत को कबूल करने से रोकती है, और फिर आखिर में चंद बातें हैं रसूलों को भेजे जाने के नाते से। आइए इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि हम इस सबक का हक भी अदा करें और हम इसमें से अपने लिए अमल की वजह भी लें। तफसीर देखेंगे आयतों के साथ चलते हुए आयत नंबर 32 से 44 तक, यानी तकरीबन 12 आयात में एक ही किस्सा। हम कोशिश करेंगे इसको कहानी के तौर पर पढ़ें और फिर आखिर में इसमें से कुछ अमल की बातें अलग से भी लेंगे। अल्लाह सुभान तआला फरमाते हैं वद्रिब लहुम मसलन, और बयान कीजिए इनके लिए मिसाल। किनके लिए बयान कीजिए? जो उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजूद थे और उसके बाद क़यामत तक जो लोग इस कुरान को पढ़ेंगे। किनकी मिसाल? रजुलैन, दो शख्सों की, दो शख्सों की। रजुल से तस्निया, ड्यूल। रजुल क्या है? एक मर्द। तो रजुलैन, दो मर्द। तो बहुत सारे मर्द क्या होंगे? रजुलान, ठीक है, या रिजाल, दोनों तरह से आता है। दो मर्दों की कहानी, दो ब्रदर्स की का किस्सा। और वद्रिब का लफ्ज भी पीछे बात हो चुकी है, दरब व यद्रिब इद्राब, मारना। और मारने का लफ्ज टू हिट के मानों में भी आता है जब किसी को मारा जाता है, सफर के मानों में भी आता है क्योंकि सफर में भी पांव जमीन पे मारे जाते हैं, और बयान करने टू एक्सप्लेन के मानों में भी आता है क्योंकि जब कोई बात बयान करता है तो हमारे कानों पे वो टकराती है। तो गोया कि यहां फिर इसका तीसरा मानी है, और इसी सबक में आपको ये लफ्ज दोबारा भी दिखेगा आगे जाकर। एक और वाक्या, ये भी अल्लाह सुब्हान तआला की बहुत ही प्यारी सुन्नत है कि वो वाक्यात को बयान करके हमें नसीहत दिलाता है। तो बयान की भी बात को गौर से सुनना चाहिए ताकि हम इसमें से अमल की बात ले सके। क्या थे ये दोनों? जालना लियाहदीहिमा जन्नतैन मिन अनाबिन, इनमें से एक को हमने दिए थे दो बाग अंगूरों के, और बागों के अंदर क्या था? और इन दोनों का घेर दिया था हमने खजूरों के दरख्तों के साथ। पहले तो तसव्वुर में लाइए बाग, जन्नतैन, जन्नतुन से तस्निया, दो बाग हैं। अनाब इनब की जमा, अंगूर, ग्रेप्स के मानों में। और खफफ ना हो हम खा कर रखे, खफा खा फा फा, किसी चीज को यूं करना, इंग्लिश में आप लिख लें सराउंड करना। अरब लोगों के की आदत क्या थी कि जब भी खजूरों के दरख्त लगाते थे ना तो ऐसे लगाते थे लाइन में, जैसे आप एक दरख्त की बाड़ बनाते हैं, ठीक है। अब जब दरख्तों को इस तरह से लगाया जाए, जैसे आप ऐसे समझिए कि इस वक्त तो आपको हमने ऐसे स्ट्रेट रोज में बिठाया हुआ है ना, लेकिन बाद जगह खास जगह दरसों में सिस्टर्स कैसे बैठती हैं दीवारों के साथ साथ, टिक 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 टिक, और बीच में सारी जगह खाली होती है, सामने कोई नहीं है। तो वो जो दीवारों के साथ लोग बैठते हैं ना, वो है खफफनाहुमा, ठीक है, एडजस्ट पे किनारों पे बैठना। अब इमेजिन करिए कि आपके पास 5 मरले जमीन का टुकड़ा है, आपने उसके चारों कोनों से शुरू करके पूरी बाढ़ की बाढ़ खजूरों के दरख्त लगा दिए, तो बीच में क्या करें, जगह खाली होती है ना। तो वहां दरसों में तो हम रिक्वेस्ट करते हैं ना कि कुछ लोग तो बीच में आके बैठ जाएं ताकि कोई सामने तो बैठा हो, हा? तो अरब लोग जगह को इस्तेमाल करने के लिए क्या करते थे कि खजूरों के बाग के बीच वाली जगह में अंगूरों की बेलें लगा देते थे, ये मुराद है, ठीक है। जी ओके, हफफ ना हुमा, ठीक है, जज़ाकअल्लाह। हफफ ना हुमा दोनों में लफ्ज से छुपा हुआ, इसका रूट क्या होगा, हफ़ा, हा फा, ठीक है। उर्दू में लफ्ज होता है हफीफ, एक होता है खा, ये हा है, फर्क समझिएगा। नखल कहते हैं खजूर के दरख्त को, नखला जनीवादी, नखला का नाम सुना होगा, मदीना के नाम के साथ भी ये लफ्ज आता है। तो दोनों यानी किसी जगह का बेहतरीन बाग क्या होगा कि जिसमें खजूर भी हो और सॉरी उसमें अंगूर भी हो, और अब मदीना के नाते से या अरबों के नाते से किसी बाग में अंगूरों की बेलें होना, ये बहुत पौष बाग था, क्योंकि डेजर्ट था, सहरा था, पानी की कमी थी, तो लिहाजा मुराद इधर क्या कि बहुत ज्यादा कीमती बाग था। अंगूरों की बेलों के गिर्द खजूरों के दरख्त इसलिए भी लगे होते थे कि नाजुक बेलें मौसम की शिद्दतों से बच जाए। फिर क्या हुआ, वजअलना बैनहुमा ज़रअ, फिर हमने इन दोनों बागों के दरमियान खेती का इंतजाम भी कर रखा था। अब ये कैसे होता है, जरा थोड़ा सा फिर इमेजिन करें, दोनों के तो बाग दो थे, ठीक है, एक तरफ का इमेजिन करें फिर दूसरा था, और दोनों के बीच में पानी देने का इंतजाम था। इमेजिनेशन में आ रहा है कि बुनियादी तौर पर वो अंगूरों के बाग थे, चारों तरफ उसके अंगूरों के दरख्त भी थे जिनसे दोहरा फायदा होता था, इन दरख्तों से खजूरें आती थी और साथ ही साथ हिफाजत का काम भी होता था, दरमियान में काश्तकारी होती थी जिससे अनाज हासिल होता था, और पानी देने के लिए बीच में नालियां खोदी नहीं थी, ठीक है, यानी आइडियल बाग जिसको आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा खूबसूरत बाग हो ही नहीं सकता जो कि उसमें था। क्या हुआ, अच्छा यहाँ पहली बात देखिए कि हम क्या सोचते कि दो लोग थे तो दोनों के दो, एक बाग उसका होता एक उसका होता, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला हमें अपने तकदीर के मामले भी सिखा रहा है कि दुनिया में किसी को दुगना मिल जाए और किसी के पास कुछ भी ना हो, ये सरासर इंसाफ है, ये अल्लाह की देन है। जिसको दो दे दिए उससे क्या मतलूब था कि एक तुम अपनी जरूरत का रख लो और दूसरे से तुम दूसरों की मदद करो। याद रखिए कि जब हम ये कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने हर एक का रिस्क मुकर्रर किया, तो बस नॉन मुस्लिम या नॉन इस्लामिक लोग जो होते हैं वो इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं अच्छा जी ये बताओ कि अल्लाह अगर रज़्ज़ाक है तो दुनिया में इतने लोग भूखे क्यों मरते हैं, और अगर अल्लाह ताला ने सबका रिस्क रखा हुआ है तो कहत क्यों आया और वहां लोगों के घर क्यों नहीं है। तो जवाब समझ लीजिए इस वाक्य की आड़ में, हल्का सा अंदाजा ले लीजिए इससे कि अल्लाह ताला ने इब्तदा में जब दुनिया बनाई थी ना तो सबके लिए बराबर बराबर हिस्से कर दिए थे, बस देने में नीचे बांटा तो किसी को दो ऐसे दे दिए, ऐसे कि जैसे आप जितने लोग बैठे हैं हम उतनी किताबें मंगवाएं और हम गिन के मंगवा लें कि इतने लोग हैं तो इतनी ही किताबें चाहिए होगी, लेकिन बाद में क्या करें, कोई मिसाल है कि सब्जेक्ट शुरू हुआ और आपको सबको बुक्स चाहिए थी, तो बजाय इसके कि सबके पास जाके दे आपको यूं पकड़ा दी जाए, तीन इधर पकड़ाई आप इन तीन को ही साथ वाले को भी दे रहे, ये है अल्लाह की बात। अल्लाह ने सबके लिए पैदा किया हुआ सब कुछ, अल्लाह ताला कभी किसी को भूखा नहीं रखता। किया क्या कि कुछ को दो का पकड़ा दिया, किसी को तीन का पकड़ाया हुआ, किसी को चार का पकड़ाया हुआ, तो जाहिर बात है कि जब किसी को तीन का पकड़ाया है तो कुछ लोग एकदम कहेंगे ना मुझे नहीं मिली, लोग एकदम जल्दी में आके कहते ना मुझे नहीं किताब मिली, हैंड ऑफ मुझे नहीं मिला, तो करना क्या है दूसरे से ले। इस्लाम ने जो दौलत की बांट का नजरिया रखा था उसके अंदर यही बांट थी, ये ज़कात उशर और सदकात जो है ये सिर्फ इसीलिए आम किए गए कि जो काम अल्लाह ने करना था वो तो तुमसे करा रहा है, ठीक है। तो यहाँ समझ की बात है, हम सब अपने पर चेक कर ले, मेरे पास अपना ही है सिर्फ, या अपनी जरूरत से भी ज्यादा है या फिर मेरे पास मेरी जरूरत का भी नहीं है। तीन ही मुमकिन सोचते हैं ना। अगर वो लोग जिनके पास उनकी जरूरत से ज्यादा है अगर वो उनको देने लग जाएं जिनके पास जरूरत का भी नहीं है तो दुनिया में एक शख्स भी भूखा नहीं मरेगा और इस दुनिया में अमन भी होगा चैन भी होगा और वो आइडियल सोसाइटी होगी। लेकिन चूंकि इंसान के नफ्स के अंदर अकड़ है और बुखल है और स्टिंजीनेस है कमजोर है जल्दी थोड़ दिला है इंसान तो जैसे ऐसा शख्स जो है फिर वो ऐसी चीजों पे दूसरों को देने की बजाय कोशिश क्या करता है कि बल्कि उसका भी मुझे ही मिल जाए। और ये वाकया आप देख चुके हैं अल्लाह के नबी की हदीस भी है कि अगर इतने आदम को सोने की भरी हुई एक वर्दी दी जाए यानी वैली ऑफ गोल्ड भरी हुई सोने से एक वर्दी हो और दिया जाए तो उसके साथ फिर वो दूसरी की भी ख्वाहिश करेगा। ये नहीं कहेगा कि चलो जिसके पास कुछ नहीं है मैं उसको दे दूं। और यहाँ याद रखिए कि यहाँ मोमिन से मुराद यानी मालदार जो शख्स है ना इससे मुराद काफिर है और जो यहाँ अभी दूसरा दोस्त दिखेगा ये गरीब है। असल में कुरैश मक्का को दिखाया जा रहा है। पीछे आपने पढ़ा था कि उन्होंने अल्लाह के नबी से एक मुतालबा किया था कि ये गरीब लोग आपके पास होंगे तो हम नहीं बैठेंगे तो क्या हुक्म दिया आपको वस बिन नफ्सा कमाल लजीना या दूना आप उनके पास बैठे जिनको जो अल्लाह को पुकारते हैं। तो यहाँ असल में यही बता दिया गया कि देखो ये मक्का वाले सरदार भी हैं मालदार भी हैं साहिब जायदा दूसरी तरफ तौहीद परस्त हैं मोमिन अल्लाह पे भरोसा करने वाले बिलाल और अम्मा करो ये आजमाइश है। कैसा था वो बाग दोबारा बाग पे आ जाइए आयत नंबर 33 किल तल जन्नतैन आतत उकुलहा दोनों बागात अपना फल खूब देते किल तल जन्नतैन दोनों बागों में फल खूब आता था। देखिए अंदाज कितना खूबसूरत है खुद देते थे ऐसे लग रहा है कि इनसे अपनी मर्जी से फल आ रहा है हालांकि ऐसा नहीं होता आता तो पीछे से लई के हुक्म से था लेकिन अल्लाह ताला बताते हैं कि वो फल खूब लाते थे जिसको उर्दू में हम कहते हैं ना फल खूब लेकर आते थे। अब फल खूब बाग खुद तो नहीं ला रहे होते लेकिन कहने का एक अंदाज है क्या था आदत उकुलहा आदत का लफ्ज वही है जो आता याती और उर्दुल किताब में हम पीछे पढ़ चुके आने के मानों में जब इसके साथ बार लग जाता है तो लाने का मानी हो जाता है ठीक है। यहाँ क्या देखिए आदत भी नहीं आतत उकुलहा आता था फल उनका उकुल लफ्ज कहते हैं मेवे को फल। अब ये फ्रूट के मानों में भी हो सकता है और किसी भी मेहनत के फल में भी हो सकता है। अरबी जुबान में फल के लिए कई लफ्ज हैं फवा के हा तुलकी जमा समर का लफ्ज बहुत आ रहा है इस सबक में आप देखेंगे तो समर भी फल है लेकिन वो ईटेबल हिस्सा होता है खाए जाने वाला हिस्सा लेकिन उकुल मेवा है फ्रूट के मानों में भी यहाँ है। वलम तस्लिम मिन हुशैया और वो इसमें से कुछ भी कम नहीं करते थे मतलब ये कि ये बाग साल में दो बार फल देते थे गर्मियों सर्दियों का फल था खजूरें भी उगती थी फिर उसके बाद अंगूर भी आ जाते थे और मौसम के मुताबिक खूब फलते फूलते थे पैदावार में कोई कमी नहीं आती थी। और इन बागों का जो मालिक था वो कई साल से इनकी पैदावार से मुसलसल फायदा उठाता था तो उसने क्या सोच लिया कि ये हमेशा रहेगा भूल ही गया कि ये अल्लाह ताला के हुक्म से इस तरह हो रहा है जब अल्लाह हुक्म उठा लेंगे चीज पीछे हो जाएगी। वफज्जरना खिलालहुमा नहरा और हमने जारी कर दी इनके दरमियान एक नहर भी पानी का इंतजाम भी मौजूद है यानी बेहतरीन किस्म का था हुआ क्या वकाना लहू समर और उसके लिए फल भी था। अब इससे क्या मुराद है इसका एक मफहूम तो वही है कि जब दोनों का आपस में मुकालमा हो रहा था जो भी आगे होगा इस वक्त वो दोनों जिस बाग में खड़े थे ना वहां फल था ये मुराद है यानी कान लहू समर इसका पहला मानी क्या है कि जिस वक्त वो दोनों बातचीत कर रहे थे उस वक्त दरख्तों पे या पौधों पे या बेलों पे फल भी लगे हुए थे ठीक है पहली बात है। इसका दूसरा मानी भी है और वो क्या है कि इस शख्स को अल्लाह ने औलाद भी दे रखी थी क्योंकि जो लोग समर है ना ये औलाद के लिए भी आता है इंसान के लिए उसकी औलाद की वही हैसियत है जो किसी दरख्त के लिए उसके फल की होती है। और लोग समर जो है ना समर समरत उनकी जमा और इससे फिर असमार जमा दर जमा एक छोटा सा असूल समझ लें कि अरबों में जमा दर जमा भी होती है बस जब हम एक लफ्ज की जमा समझते हैं लेकिन वो दूसरे की जमा होती है, तो यहाँ मुराद है खूब फल देने वाला दरख्त और बाग कि जहां से अल्लाह ताला ने इनके लिए बहुत ज्यादा फल रखा हुआ था, तो वो सब कुछ था और औलाद भी है, तो मुराद दोनों ठीक है। और आप देखेंगे ये बात भी कि जहाँ अल्लाह ताला दौलत देता है ना, वहां भी औलाद भी देता है, माल भी देता है। और ऐसे ही लगता है कि बस उसके पास, वो कहते हैं ना इनके घर में तो खून बरसता है, जहाँ दौलत होगी माल होगा। किसी को भी देखे अपने खानदान के या दोस्तों के, दोस्तों में से अगर खुशहाली आती है तो सब कुछ बहुत अच्छा होता है, बच्चे भी पढ़ लिख जाते हैं, घर भी अच्छा है, सब कुछ इधर से उधर, उधर से उधर। और किसी अपने गरीब रिश्तेदार का सोचे तो ऐसे लगता है कि एक के साथ दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी है, एक चीज के साथ दूसरी आती है। ये अल्लाह ताला की आजमाइश भी होती है। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे सेहत होती है तो चेहरे पे खूबसूरती भी आ जाती है, और सेहत अंदर ना हो तो चेहरा जो है वो कमजोर और मुरझाया हुआ और बिल्कुल ऐसे बुझा हुआ भी लगता है। तो गोया कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उसको माल के साथ औलाद भी दी थी। अब हुआ क्या, जब वो अपने दोस्त के साथ बातें कर रहा था, फकाल अली साहिबी ही, तो उसने कहा अपने दोस्त से, कब के बहुआ यो हावी रुहू, जबकि वो इससे बातें कर रहा था। ये जो लफ्ज है ना यो हावीर, हौर से हावरा, उर्दू में लफ्ज मुहावरा हम बोलते हैं ना प्रोवर्ब के मानों में, वो भी ये लफ्ज है मुहावरा, एक दूसरे से बातचीत करना। और उर्दू में इसके लिए सबसे मुनासिब लफ्ज है तबादला ख्यालात करना, किसी पर फौकियत जतलाना माल की वजह से। ज्यादा बुरा उस वक्त होता है जब उसको एहसास कमतरी दिलाया जाए। तो यहाँ इस शख्स का ये जो मुहावरा था ना, ये बड़ाई का अंदाज था, खुद बड़ा बनने वाला अंदाज था। क्या कहा, अब आगे से आप कॉमास लगा लें या हाईलाइट कर लीजिए, यहाँ से उस शख्स का कॉल शुरू होता है, किसका, जिसके दो बाप थे। और देखिए बाप दो थे, जेब में कितना ज्यादा डिसेंट और वेल ऑफ किस्म का शख्स आता है, लेकिन बोला तो कितनी घटिया और नीच बात की, अनाक्सरु मिनका मालन, मैं तुमसे ज्यादा हूं माल में, वाजु नफरा, और बहुत बड़ा हुआ हूं नफरी के एतबार से भी। देखो मेरे पास माल भी ज्यादा है और लोग भी ज्यादा है, और जहां माल ज्यादा होता है वहां लोग भी ज्यादा होते हैं। जब आप खूब खाते पीते होते हैं ना, तो लोग भी बहुत आएंगे आपके घर, मेहमान भी बहुत आएंगे, खातर बड़ी अच्छी होती है, दोस्त भी आ जाते हैं, लोग दूर दूर से आकर नस्बतें जोड़ते हैं ताकि मुख्तलिफ वक्तों, किसी मुश्किल वक्त में आप उनके काम आ सके। और माल जाता है ना, तो सच्ची बात है ऐसे सारे दोस्त भी चले जाते हैं, फिर कोई आता ही नहीं है। फिर लोग कहते हैं कि आप इनके जाना, अच्छा सलाम कर लेंगे, अच्छा फोन कर लेंगे, अच्छा जाएंगे, आखिरी दिन पे जाते जाते फोन करते हैं, आई थी बस आपको मिलने आना था, फिर बाजारों के चक्कर ही बड़े हो गए, फिर मैं वापस कल मेरी फ्लाइट है जा रही हूँ। और कई रिश्तेदारों का दिल तोड़कर जहाज में बैठ जाते हैं। कभी भी जहाज में बैठने से पहले सोचा करें कि कोई ऐसे रिश्तेदार है मेरे जिनकी नजरें लगी हुई, जिनको पता था कि मैं आई हूँ अपने मुल्क में और मैं उनको मिले बगैर जा रही हूँ। अपनी जिंदगी का असूल बनाएं, सबसे पहले महरूम और डिप्रेस किस्म के लोगों को विजिट किया करें। एक दफा आप चले गए जरा उन लोगों को मिलने जिनकी दुनिया बड़ी वसी है, वो तो रोज आपको बाजारों में ले जाएंगे, बुटीक्स में ले जाएंगे, पार्लर्स में ले जाएंगे, और रोज शाम को किसी ना किसी दावत का आपको बगैर बुलाए इन्विटेशन मिल जाएगा, क्योंकि आप बाहर से आए हैं, तो आपका जाना तो उनके लिए एक बड़ी ऑनर रखता है। और बहुत सारे मरे से गरीब रिश्तेदार बेचारे महरूम रह जाते हैं। यहाँ भी तसव्वुर में ऐसे ही आता है, बिल्कुल आप इमेजिन करें, मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई सेठ साहब है, बहुत खाते पीते, हाथ में दो दो सेलफोन पकड़े हुए, पुश्त के पीछे दोनों हाथ बांधते हुए अकड़ती हुई चाल है, और यूं करते हुए दिखा रहे हैं, ये देखो मेरी फैक्ट्री है, ये मशीन है, ये हमने इतने की ली थी, बोली। और दूसरा बेचारा जो गरीब साथ था वो और ही दबता जाता है। तबजीर और इसराफ की बदतरीन मिसाल है। देखिए अल्लाह ताला जब किसी को माल देता है तो मना नहीं करता कि आप उस माल से फायदा उठाएं, लेकिन जब हम इससे दूसरों का दिल जलाते हैं तो बहुत तकलीफ की बात है। एक होता है आप उनके अंदर बड़े बने, जो खुद भी बड़े बनने के शौक में है, कोई पॉश महफिल, कोई किटी पार्टी, कोई है बड़ा फंक्शन, किसी रिजॉर्ट में बैठे हैं, वो भी डायमंड के रिंग्स घुमा रहे हैं, आप भी घुमा लीजिए, चलिए ठीक है सब एक जैसे, ये भी बुरा है। लेकिन ये तो बहुत ही बुरा है कि वो लोग जिनके पास माल नहीं है आप उधर माल का दिखावा करें, जिनके पास खूबसूरती नहीं है वहां जाके खूबसूरती का दिखावा करें। और बस जब आप लोग अपनी औलादों का दिखावा करते हैं, मेरे बच्चे ये पढ़ते हैं, उन यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, अब हो सकता है उन बेचारों के बच्चे ही ना, और हैं भी तो उन यूनिवर्सिटियों में ना पढ़ते हैं, और आप कभी अपने बच्चों के नंबर्स की जो बातें करते हैं, और आप देखिए कि इतनी घटिया सोच होती है कि जब लोग अपने माल को इस तरह ब्रांडेड करके लोगों के सामने रखे कि लोग मुतासर हों। कभी आप देखिए कि वो लोग जो बड़े लोग कहलाते हैं या उनको मजा आता है जब लोग उनको बड़ा कहे, तो वो लोग अक्सर लोगों को मुतासर करेंगे ना, तो चीज बाद में बताएंगे, भले बुटीक का नाम बताएंगे, वहां गई थी उस स्टोर से लाई है, वो लिफाफा खोल खोल के सामने रखेंगे। यानी मुतासर करने के लिए ब्रांडेड चीजों के पहले नाम लेते हैं फिर दिखाते हैं, और बस सिर्फ अगले बेचारे को पता ही नहीं होता कि ये कोई ब्रांड है, वो कहता है वो क्या होता है, तो सारी शान चलेगी। खूबसूरती हो या कोई नेमत हो उसको छुपा के रखें, अपने दिल में शुक्र गुजारी कि अल्लाह तूने मुझे नरम कपड़ा दिया, तूने मुझे सॉफ्ट चीज दी, मेरे घर में नरम कुशन है, ये मेरे लिए। और कभी आपको लगे ना आपके घर में कोई गरीब बंदा आ रहा है, तो यकीन करें थोड़ी बहुत चीजें जो है ना इस तरह की जो बहुत ही पंपी सी है उसको उठा दे, उनका दिल क्यों जलेगा, दुख होगा। हम ये तो कर नहीं सकते कि आधी उठा के उनको दे दे, जैसे ये शख्स नहीं कर रहा कि दो में से एक बाग अपने दोस्त को दे। हाँ ये हम बहुत कर रहे होते हैं, बल्कि ऐसे गरीब लोगों के सामने जब लोग बैठते हैं ना तो मैंने देखे और ही खुलते हैं, क्योंकि इनको पता है इन्होंने आगे से बोलना ही कोई नहीं। देखिए ना आप अपने जैसों में बैठी थी, आप कहते हैं ये मैं मार्सल स्पिंजर से लाई, वो कहते जी मैं ये डबडम से लाई, आपसे वो क्यों मुतासर हुई। लेकिन अब अंदर वो एक भड़ास है ना बड़े बनने की, इतने बड़े बन गए, तो फिर अमूमन लोग ऐसे लोगों में जिनको बेचारों को इन चीजों का नहीं भी पता होता ना, तो उनके सामने बातें करते हैं, तो ये बदतरीन बात है। दूसरे का दिल जला के आप बड़े बने तो क्या हुआ, ये तो ऐसी है कि आपने अपना कद लंबा करने के लिए किसी की लाश नीचे रखी उस पर खड़े हो गए। कभी बातें करते हुए सोचा करें कि किसी के दिल पे खुशी हो रही है कि नुकसान, और याद रखिए किसी की मोहब्बत लेने का छोटा सा गुर भी है। आप जिनके अंदर बड़े बड़े बन के दिखा रहे हैं ना, अब उनको क्या हुआ, वो आपकी से मुतासिर तो हो सकते हैं, उनके दिल में आपकी रौनक तो आ रही है, लेकिन आपसे मोहब्बत तो नहीं करेंगे, तकाबुल ही कर सकते हैं ना, घुड़ेंगे। इसके बरक्स अगर आप उनके बिल्कुल बराबर हैं, ऐसे गरीब रिश्तेदार हैं, आप उनके साथ आते हैं, आप कहते हैं मैं तो जमीन पे बैठूंगी और मुझे तो नीचे ही अच्छा लगता है, और छोड़े कुशन में इधर ही बैठ जाऊंगी, देखो मुझे और कोई गोश्त नहीं खाना, ये नहीं खाना, मेरे लिए तो दाल चावल बनाना। उनको आप अपने आपको उनके से बना के दिखाएं, और हम सिर्फ नोट करके देखें, खास तौर पे हमारा जो दिखावा होता है ना इन चीजों का, वो अमूमन रिश्तों नातों और शादी ब्याह के मौके पे होता है, और ऐसे वक्तों में भी तकलीफ मिलता है। मैंने अक्सर देखा है हमारी भी फैमिली में हर तरह के लोग हैं, कुछ बाहर के मुल्कों में रहते हैं, तो बस माएं बेचारी अपनी बेटियों के लिए, अभी वो 12-14 साल की होती है ना, तो जो बाहर रिश्तेदार होते हैं उनको फिर कह के अच्छा इसके लिए एक बेड सेट ले आओ, अच्छा इसके लिए डिनर सेट ले आओ, क्रॉकरी ले आओ, क्यों कि बाहर से आए बता सकेंगे कि हमने भी बाहर से मंगाया। यकीन करें वही चीजें पाकिस्तान में भी मिलती हैं, बल्कि बाज़ औक़ात तो यहाँ से सस्ती मिल जाती हैं, पता नहीं क्यों, शायद ओवरहेड एक्सपेंसेस कम होते हैं उनके स्टोर्स कर इनके, लेकिन सिर्फ ये दिखाने के लिए कि कल बेटी के कह सकेंगे ससुराल में ये बाहर से बुलाया था, ये खाला से मंगवाया था, ये बोला से मंगाया था, और नाम बन गए। तो मोमिन इन चीजों से बिल्कुल अपने आप को खाली समझता है। किसी पर फौकियत जतलाना माल की वजह से, दूसरे को एहसास कमतरी में डालना, ये तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ की बात हो सकती है। लेकिन यहां इस शख्स की एक खूबी देखिए कि माल आने के बावजूद इसने गरीब दोस्त से ताल्लुक नहीं तोड़ा, ये खूबी की बात है। बहुत सारे लोग तो दौलत के आते ही गरीब लोगों से दूर ही हो जाते हैं, पहचानते ही नहीं, वो अपने माँ बाप के बारे में भी कह देते हैं हाँ ये हमारे पुराने खिदमतगार हैं, ये हमारे फुलान है, ये फुलान, और गरीब रिश्तेदारों से तो ताल्लुक टूट जाता है। और बस दफा गरीब लोगों से ताल्लुक भी इसलिए होता है कि जरा हमसे कोई तो मरूब हो, किसी पे तो हम जरा अपना रोक डाल सके। तो ये सारी माल की खराबियां हैं जो दजल है दुनिया का। खैर आगे देखिए क्या हुआ, इसने तो अपनी बड़के मार ली और अपने आप को बड़ा भी कह दिया, आजू अजीज से नफरत, नफरी को कहते हैं, अदद को कहते हैं। दखल जन्नत हो और वह दाखिल हुआ अपने बाग में, बहुआ जालिम लिनफ्सी, इस हाल में कि वह अपने अपनी जान पर जुल्म कर रहा था। कैसे जुल्म कर रहा था, अब इसकी अगली पहचान अगली चीजें हम देखेंगे। पहला इसका जुल्म तो यही है कि तकबर कर रहा है, ठीक है। दूसरा जुल्म क्या, खुद को क्रेडिट दे रहा है, आगे हम देखेंगे। और तीसरा इसका जुल्म हम देखेंगे कि आखरत के बारे में मिसकॉन्सेप्शन का शिकार है। क्या था जुल्म, अब यहां से इसकी वो बातें। काला, उसने कहा, मा सुन्नु अन तबीदा हाजिही अगदा, मैं नहीं समझता कि ये बाग कभी भी बर्बाद हो सकता है। यानी मेरे ख्याल में तो ये बाग कभी भी बर्बाद नहीं होगा। ये है एक बहुत बड़ी गलत फहमी जो माल के साथ पैदा हो जाती है, और वो क्या है कि जो आज मुझे मिल गए ये कभी पलटेगा नहीं। ये तो लफ्ज है ना, तबीदा बादा यबीदु बयादुन से, यानी बा या दाल इसका रूट है, खराब होने और तबाह होने के माना में आता है कि ये कभी खलाक नहीं होगा, खत्म नहीं होगा और कभी नहीं आएगा। यदि जब दौलत होती है तो यकीन करें ऐसा लगता है कि ये कभी नहीं जाएगा, ये सिर्फ ये अपने आप को क्रेडिट दे रहा है, मेरा बाग बड़ा मिसाली है, मेरी प्लानिंग बड़ी अच्छी है, हर तरह के देखो खतरों से महफूज है, ये हमने सिक्योरिटी बाड़ भी लगा ली, ये कर लिया, देखो वो इस तरह की करके, मतलब उसका ये था कि मेरे बाग को कोई खतरा नहीं है। और दूसरा इसका गुमान आयत 36 में वमा जुन्नु साता काइमतन, और मैं ये गुमान नहीं करता कि क्यामत कायम होने वाली है। ये सेकंड इसकी मिसकॉन्सेप्शन थी कि मेरा नहीं ख्याल कभी क्यामत आएगी, ये ऐसे ढकोसले हैं, कौन कहता है क्यामत आएगी और आने वाली है, ये कभी नहीं आनी। और अगर बिल फर्ज मुहाल आ भी गई तो फिर तीसरी बार वलई रोदित तुला रोबी, और अगर मुझे लौटा ही दिया गया अपने रब की तरफ, देखिए बार बार लफ्ज रब का बोल रहे, मुसलमान था, काफिर नहीं है ये शब्द, लेकिन आगे जाके आप देखेंगे कि इसका शिर किस किस्म का था। और रोदित तू का लफ्ज क्या है, रद से, ता इसमें अलग कर दीजिए, पीछे रह गया रद, रा दाल दाल पलटाया जाना, यानी रिटर्न के मानों में कि अगर कभी मुझे वापस भेजा भी क्या मेरे रब की तरफ से, मेरे रब की तरफ, लाजिदन्ना खैरा मिन्हा मुनकलबा, तो मैं लाजिमन पाऊंगा इससे भी बेहतर पलटने की जगह। यहाँ देखिए आप दो, एक आयत के अंदर आखरत के बारे में माल की कसरत की वजह से जो गलत फहमियां पैदा होती है ना वो सब जमा कर दी। पहली खराबी जो माल की कसरत से पैदा होती है वो ये होती है कि मेरा रब मुझसे खुश है। देखिए इंसान अल्लाह ताला को अपने ऊपर क्यास करता है, अमूमन हम इंसान जब किसी से खुश होते हैं ना तो हम उसको ज्यादा देते हैं, और जिससे नाराज होते हैं तो उससे छीन भी सारा लेते हैं। ये मिसकंसेप्शन है कि चूंकि अल्लाह मुझसे खुश है तो उसने मुझे दिया, हाजा मिन फजल रब्बी, चाहे हराम का हो चाहे नाफरमानी का हो, चाहे उसको पाकर नमाजें रोजे इबादत छूट जाए, लेकिन बहुत खुश होते हैं कि अल्लाह ने दिया हुआ। ठीक है, पहली मिसकंसेप्शन तो लिख लीजिए बड़ा बड़ा करके, दुनिया में जो मिला है कोई जरूरी नहीं कि अल्लाह की रजा से मिला। देखिए क्या किसी को जो सजा मिलती है तो खुश होकर मिलती है, उससे नाराजगी से मिलती है ना। और बोझ डालो इस पे, गधे पे घोड़े पे अगर मालिक बोझ डालता है तो खुशी से डालता है, वो कहता है इसको और डालो, इसके ऊपर डालो। अल्लाह सुभाना ताला बाज़ुकात हम पर और ज्यादा और चीजें डाल देता है ताकि हम गलत फहमियों का शिकार हो जाए। फिर दूसरी चीज जो पैदा होती है वो ये है आखिरत माल की कसरत के साथ कि चूंकि यहां मिल गया तो वहां भी मिलेगा, ये एक अलग थॉट है उससे, चूंकि यहां मिल गया तो वहां भी मिलेगा, ये सेकंड मिसकंसेप्शन होती है माल की कसरत के साथ। फिर एक और मिसकंसेप्शन क्या होती है कि चूंकि दुनिया इतनी प्यारी सजी सजाई है तो ये खत्म ही नहीं होगी। आजमा के देख ले, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, जिन्होंने अपनी दुनिया को ज्यादा सजाया होता है उनको मौत और क्यामत और आखरत से ज्यादा ही दूरी महसूस होती है। वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, हमने तो जलजला प्रूफ इमारत ली हुई है, हमने तो इस घर के अंदर ये सीमेंट लगवाया और हमने तो इसको इस तरह से सिक्योर किया तो ये तो खत्म ही नहीं होगा, तो लिहाजा क्यामत व्यामत कोई नहीं आनी, अव्वल तो मैं मानता नहीं और अगर आ भी गई तो बेहतर होगा, देखना अल्लाह मुझे ज्यादा देगा। आज भी मादा परस्त लोगों का यही नजरिया, कहा मुझे ये नहीं होगा, और चूंकि मेरे अंदर खूबी थी तो ही अल्लाह ने दिया। वो देखो बेचारे गरीब मारे फिरते हैं, जूतियां चटखाते हैं, वहां भी जाकर ऐसे ही पड़े रहे होंगे। खैर आयत 37 قال له صاحبه وهو يحاوره, अब ये दूसरा साथी, या लिख लीजिए साहिब से मुराद दूसरा साथी है, इसके साथी इससे कहा जबकि वो इससे गुफ्तगू कर रहा था, पहले तो यहां से एक और है कुछ, चले आप खामोशी से सुने। ये जो बीच में बोलने लग जाते हैं ना, अभी पूरी बात नहीं सुनते, आधी बात के बाद हम कहते हैं कि हम अपनी राय दे दें, ये दुरुस्त तरीका नहीं होता। देखिए, एक तो बुरा भी लगता है और दूसरा एक अमल पते की बात कहूंगी आपको कि जिस बंदे को आप ज्यादा बोलने देते हैं ना, बोलो बोलो, थोड़ी सी बात के बाद वो खुद भी अपनी बात पे से ग्रिप लूज कर चुका होता है। कल्ला बदल लो, छोटी बात दलील वाली ये ज्यादा मुअसर होती है लंबी बात के। आप अल्लाह ना करे कभी मौका है आपकी जिंदगी में कोई आपसे लड़ना चाहे या झगड़ा चाहता है या बहस में पड़ गया, वो आपको कुछ कहता है, बोलता है नहीं, अब आप बीच में बोली नहीं 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 ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं था, ये नहीं, अब आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। आप क्या करें, बेवकूफ बने जी। ओके ठीक, और कुछ नेक्स्ट, कुछ और है? ठीक है, जब आप करेंगे ना तो पता है इसका अमली नतीजा कहता है, ऐसा मैंने खुद भी बहुत दफा आजमाए लोगों से, बहुत बड़ी बात कहकर वो बात शुरू करते हैं और जब यस हाँ हूँ होता है ना, अभी चंद दिन पहले की बात है, तो वो बात जब उन्होंने तो मुझे ये फीलिंग दी कि बहुत बड़ी बात है, तो मैंने उनको मौका दिया कि आप पूरी बात अपने दिल की मुझे बताएं। जब वो बताने लगी ना, तो अब वो बात तो बीच में इतनी सी थी, वो बोलता है हार्ड निकला चूहा और चूहा भी नहीं होता कभी कभी। अब हुआ क्या कि जब मैंने उनको बोलने का मौका दिया, वो बात तो कर चुकी जो थी, तो मैंने कहा जी हाँ, फिर अब वो और कुछ था नहीं ना, तो कहती है बताने में तो मुझे बात बड़ी छोटी लग रही है पर मुझे तो बहुत बड़ी लग रही थी। यानी आप सोचिए, देखिए ये इंसान के ऊपर शैतान का एक धोखा होता है। इसलिए कभी कोई बात आपके जहन में हो ना, किसी को नहीं बताने वाली ना, कागज ले और कलम ले, लिखना शुरू कर दे, आजमा के देखेंगे कि बताने में बात हमें हमेशा छोटी लगती है। मिसाल है, शौहर रात को आए, बीवी सारे दिन की को बात दिल में लेके बैठी, आ ले आज ये बताऊंगी वो बताऊंगी, अब वो सारा दिन जलती रही कुड़ती रही दिमाग में, तो आप देखिए वो बीच में कहेगा अच्छा असल बात हुई क्या थी, वो इतनी सी होती है। लेकिन अब हम शर्मिंदा हो रहे होते हैं कि हमने इतना रिएक्ट किया, हम इतना रोए धोए, हम इतना चले, तो फिर हम मैं आपको बता ही नहीं सकती, आप समझ ही नहीं सकते, लेकिन बात थोड़ी होती है। यकीन करें आप, हम सब इंसान है, देखिए हमें से कोई भी अपने आप को इंसानियत के जज्बों से ऊपर कर ले तो ये झूठ होगा। खुद से खुद बात करके सुना के लिख के उसको फाड़ के फेंक दे, आपके दिल का वो गौर खत्म होगा। और आपने सुना कि ये बात लोग कहते हैं एकदम सुना दें तो दिल हल्का हो जाता है, वजह ये कि वो हमने सोची बहुत होती है, किसी एक को सुनाते हैं उसके बाद दोबारा किसी से कहना मुझे बात सुनाओ तो वो जोश नहीं होता, तो खुद को सुना ले या अल्लाह को सुना ले। तो जब बंदा बहुत ज्यादा दूसरों के ऊपर इस तरह की नजरें लगा लेता है ना, तो उसका नुकसान क्या होता है कि उससे फायदा नहीं होता। तो इस शख्स ने उसकी पूरी बात सुनी, वह जो हाविरू से बातें भी कर रहा था, अब इसकी बात सुनिए, अकफर तबिल्लज़ी खलक़का मिन तुराब, क्या तूने कुफर किया उस हस्ती का जिसने पैदा किया तुझे मट्टी से। तुराब का लफ्ज़ हम पीछे भी देख चुके हैं, सूखी मट्टी को कहते हैं डस्ट के मानों में, पहली फेस इंसान के पैदा होने में, सुम्मा मिन नुत्फा, फिर उसने नुत्फा से बनाया, सुम्मा सव्वाका रजुला, फिर उसने तुझे सही सलामत आदमी बना दिया। कितना अकलमंद बंदा, देखिए उसने क्या बातें की, बाप की बड़ाइयां। क्या बनना वो पहला शख्स बताइए, क्या बनना चाहता था, बड़ा बनना चाहता, उसने उसको उसकी औकात दिखा दी कि तुम नुत्फे से बना हुआ है, मट्टी से बना हुआ है। ये है आज के दौर में करने का काम। देखिए आज का जो दजल है ना, वो मटेरियलिज्म है, लोग ग्लैमरी चीजों के नशे पे चूर है, हाय ये वो गोल्डन दिस दिस। आज के दौर में अगर आप चाहते हैं लोगों को दीन से जोड़ना, ये काम कीजिए जो आधे जुमले में इस शख्स ने कर दिया कि ऊपर से वो गोल्डन विनीर उतार दें, चमकता हुआ गोल्डन कागज उतार दें, नीचे से मट्टी की दीवार निकलेगी। कभी किसी के घर में जाए, उसकी चमकती हुई चीजें पकड़ के दिखाए, देखो कभी ना देखे, ये हम अगले का दिमाग खराब कर देते हैं, अच्छा किधर है, फिर पलट पलट के पीछे से देखते हैं, अच्छा ये गोल्ड कितने कैरेट का लगा हुआ है, अच्छा ये गोल्ड प्लेटेड है, अच्छा ये फलां कंपनी का, ये फलां का, ये फलां का, नाम भी नहीं लेने आते जिन कंपनियों का क्रिस्टल बना पड़ा होता है और हम देख के मरे होते हैं, कभी नजर भी ना डाले उस तरफ, वजह के इससे अगले को और खुशी होती है कि देखा मेहनत की है तो देखा नहीं इन्होंने। लोग बस यही चाहते हैं कि एकदम ये असल दिखा दें। असल आप देखिए कि मिसाल है कि ये सेलफोन है ना, हमें बहुत बड़ी चीज लगता है क्योंकि ना हमें बनाना आता ना कुछ, एक दफा अगर इसको खोल के अंदर से भी आपके सामने तारों को इधर उधर जोड़ तोड़ करके दिखा दे, कैसे करते हो सकता है अगली दफा खराब हो तो खुद भी ठीक कर ले। जो चीज अंदर से खुल जाती है ना, एक्सपोज हो जाती है, उसकी अट्रैक्शन खत्म हो जाती है। इसी तरह आज की औरत ने अपनी अट्रैक्शन खत्म कर दी, इतनी एक्सपोज हुई, क्या वो कशिश ही नहीं रही जो एक औरत को एकदम अचानक इस तरह से कपड़ों में देख के लगनी थी। इस दुनिया को आज, यानी आज अगर हम किसी इंसान को इस दुनिया के शहर में मुबतला देखें, सारी दौड़ धूप भाग दौड़ क्योंकि आगे वही मौजू आने वाला है, तो यही समझ लीजिए आज मेरे और आपके करने का काम क्या है कि लोगों की आंखों से चढ़ा हुआ ये पर्दा उतार दें दुनिया का। ये दुनिया धोखे का पर्दा है, इसके ऊपर से जब पर्दा निकालते हैं ना तो बिलीव नहीं दुनिया किस किस्म की सामने आती है कि शायद आपने कभी इसके बारे में देखा हो कि नहीं। चंद एक किसी ने तस्वीर भेजी मुझे जिसमें एक सेम सेटअप है और उस सेटअप के अंदर ऊपर एक सोफा भी और हर चीज लकड़ी है, जैसे वो जिसको पंजाबी में फटियां नहीं कहते, फटियां जोड़ के बनी हुई चीज है, ठीक है। और उस चीजों के अंदर देखने में कोई कशिश नहीं लग रही, लेकिन उसी के नीचे फिर एक और तस्वीर है जिससे समझ के आ रहा है कि अब इसी लकड़ी की जो चीजें थी उसके ऊपर पैडिंग करके सोफा सेट और बीच में मैचिंग और सारा कुछ बना दिया। अब वो तस्वीर किसी ने तो ऐसे ही भेजी होगी, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि वो तस्वीर हकीकत में आज की इस दुनिया की, ये शख्स भी यही काम करता हुआ दिख रहा है कि ये उसके ऊपर चढ़ा हुआ पर्दा उतार रहा है कि तुम क्या इस चीज को बड़ा समझते हो, तुम तो मट्टी के बने हुए हो, तुम तो नुतफे से बने हुए हो, तुम तो डस्ट के एक पार्टिकल हो, तुम अपने आप को इतना बड़ा क्यों समझते हो। तो यकीन कीजिए अगर मैं और आप ये काम कर दें तो आप देखेंगे कि लोगों के आंखों से ये पर्दा उतर जाएगा। लोगों को खूबसूरत जिंदगी का राज दिखाए, इंजॉयबल लाइफ दिखाइए, वो नरम सोफा नहीं, वो लकड़ी का बना हुआ चाय जो अंदर का ढांचा है, अगर आप खुशी से उस पर बैठे हैं, अल्लाह की फरमा बरदारियों के साथ बैठे हैं, तो आप उसमें भी खुश हैं। बहरहाल बात फिर बाद में करेंगे, आगे चलते हैं। उसको उसकी असल दिखा दी और साथ ही अपना अकीदा बता दिया, लाकिन्नहु अल्लाहु रब्बी, लेकिन मैं तो मानता हूं कि वो अल्लाह मेरा रब है, वला उश्रिकु बिरब्बी अहदा, और मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। पहला सबक उसको क्या पढ़ाया, इंसान कमजोर है, ठीक है, इंसान की औकात। आप कुरान की जुबान में कहें तो सिखा दिया इया का नाबुद कि तू बंदा बन के रहे, तू आजीज है, तू कमजोर है। अब अगला सबक सिखा रहा है लाकिन न हो अल्लाह रब्बी, ये कौन सा सबक है, या कना बुदू या कनस्ताई, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह अकबर। ये दो काम कर दे, लोगों को उनका छोटा होना और अल्लाह का बड़ा होना सिखा दे, आधे से ज्यादा मसले उनके यही खत्म हो जाएंगे कि देखो मैं तो उसको मानता हूँ। अच्छा जहाँ हुक्म भी तो कह सकता था ना, तू उसको रब मान, तू उसको अल्लाह मान, नहीं भाई मैं तो ये मानता हूँ, तू मानना मान, तेरी मर्जी, मेरी नजरों में तो वो रब ऐसा ही है। आप देखेंगे कि जितना ज्यादा अल्लाह के साथ बंदे का मुकाम, बंदे का ताल्लुक दुरुस्त होता जाएगा, जिंदगी से गुना खत्म होते जाएंगे। ये बड़ापन तो तभी होता है ना, देखिए ये ऐसे ही है, मालिक गुलाम की जगह पे बैठ जाए और गुलाम मालिक की जगह पे बैठ जाए, इमेजिन तो करें, तो क्या सारा निजाम बिगड़ेगा कि नहीं, बिगड़ जाएगा ना। क्या फिर मालिक की बात मानेगा गुलाम और गुलाम बनेगा मालिक के आगे झुकेगा, बस यही करना। आज जो है ना, ये जिसको आप कहें कि डीलोकेटेड हुए हैं हम लोग, हमने अपनी लोकेशन बदली हुई है, हम अपने रब को पहचानने नहीं। वल्लाह ही जिस दिन आपको अपने रब की असल याद आ जाती है तो आप वो रहते ही नहीं जो आप पहले थे। मैं किसी को शरीक नहीं बनाऊंगा, यानी कोई मेरे रब जैसा है ही नहीं तो मैं उसको शरीक क्यों बनाऊं। तीसरा सबक आप देखिएगा, 39 में सिखाया रहा, उसको तीन लेसन दे रहा है। तीसरा क्या, वल्लाह इस दखल तजन्नतक, और जब तुम अपने बाग में दाखिल हुआ तो क्यों नहीं तूने कहा, क्या कहता, कुलता, क्यों ना तूने कहा, माशा अल्लाह, जो चाहा मेरे रब ने किया, यानी ये सब अल्लाह के फजलो करम से है, ला कुव्वत इल्ला बिल्ला, और अल्लाह के सिवा किसी को कोई ताकत नहीं है। यानी अब ये देखिए, नेमतों से फैजयाब होने का तरीका सिखाया जा रहा है कि ठीक है तू तो कमजोर है, तेरा रब सबसे आला है, और उस आला रब ने तुझे कमजोर को एक बाग दे दिया, नेमत दे दी, घर दे दिया, औलाद दे दिया, माल दिया, जो भी नेमत मिली उसको सोच ले। जब तू बाग में जाता है, हर तरफ खूबसूरत मंजर है, फलों फूलों से लदा हुआ तेरा बाग है, तो तुझे उस वक्त क्या कहना चाहिए था, माशाल्लाह जो मेरे रब ने चाहा। और कौन कहेगा माशाल्लाह जिसका दिल अपने रब के साथ जुड़ा होगा। बिलीव में ये जुमला आदत से नहीं आता, ये बंदे की सोच से आता है जुबान पे। आप अपने बच्चों को बचपन से सिखाए, अल्हम्दुलिल्लाह बचपन में कहेंगे, बड़े होके भूल जाएंगे। और अगर आप इसको बच्चों की तबीयत का हिस्सा बना दें कि बेटा जो मिलता है रब से मिलता है, जो दिया है रब ने दिया, तो आप देखेंगे कि उनकी जुबान से ये अकीदा बन के बात निकलेगी कि माशाल्लाह जो मिला रब से मिला, जो दिया रब ने दिया, जो चाहा उसने चाहा। क्या हम अपनी जिंदगी में इसके बारे में सोचते भी हैं? जितना ज्यादा एक इंसान को अपने रब की कुदरत का यकीन हो जाएगा उतना वो मानेगा। और याद रखिए अल्लाह की कुदरतों पे यकीन आ जाए तो फिर माशाल्लाह का लफ्ज एक मजाक के तौर पे भी नहीं निकलता जी, माशाल्लाह माशाल्लाह ये दिल की अंदर से निकलता है कि जो मेरे रब ने चाहा। दिन में 4 दफा भी आप अपने बच्चे को देखेंगे ना तो आप कहेंगे माशाल्लाह ये वही है जो तूने चाहा। घर को देखेंगे ये मेरा कमाल नहीं है, ये अल्लाह की देन है, असल ताकत अल्लाह की है, उसकी मर्जी के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। यकीन करें कि आप कह सकते हैं कि लफ्ज माशाल्लाह में तौहीद कूट कूट कर भरी हुई है। जो अल्लाह चाहता है वही होता है, किसी के चाहने से या असबाब और वसाइल के होने से कुछ नहीं होता। ये है आज के दौर का शिर्क। ये जो पीछे उसने कहा ना कि मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं बनाता, ये था शिर्क। क्या शिर्क है? असबाब और वसाइल। आज का इंसान असबाब में खो गया। हाय बच्चा, बाप होगा तो बच्चा पलेगा, बाप नहीं रहा तो बच्चा तो बेचारा खत्म ही हो जाएगा। अच्छी जॉब है कब मिलेगी? जब अच्छी एजुकेशन होगी। और घर में अच्छा खाना तब आएगा जब अच्छी सी जॉब होगी। ये ऐसा बड़ा शिर्क है जिसने आज की इंसानियत को बस परेशान कर दिया। आजकल बहुत ही अल्लाह ताला मौका दे रहा है ऐसे लोगों की जिंदगी पढ़ने का जिसके अंदर हमारे लिए बहुत सारी बातें। इमाम बुखारी हो, इमाम हुसैन हो, और इसी तरह के और बड़े लोग हो, मैंने सबकी जिंदगी में जो मुश्तरक चीज अभी तक पाई है कि पैदा हुए गरीब घराने में, या पैदा होते या तो बाप फौत हो गए या बाप छोड़ के चले गए। पहला इंसान का दिमाग में समाया हुआ एक जो ख्याल है ना वो निकाल दिया कि बाप किसी बच्चे के बड़े होने के लिए काबले, उसके इज्जत होने के लिए कोई शर्त नहीं है। ये तो अल्लाह की शान है कि बापों के हाथों में बच्चे अच्छे बन जाए, जरूरी तो नहीं है। फिर माल, फिर औलाद। आज ये जो हमने अपने बच्चों के अंदर एक कूट कूट के ख्याल डाल दिया ना, कैरियर बिल्डिंग, लिख लीजिए कैरियर बिल्डिंग का लफ्ज भी शिर्क है। ये कैरियर के पीछे भागते हैं ना, दबे दबे लफ्जों में माए भी ये कहती है ना, फिर कैरियर तो बनाना है ना। बच्चियों का कैरियर तो बनता था उनकी घर गृहस्थी से, उनको अदब और सब्र और शुक्र सिखाकर। आज उसको भी हमने साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में ढूंढना शुरू कर दिया। और आज बच्ची भी जब जॉब पे ना लगे तो माँ भी सोच रही होती है कि इसको भी जॉब करनी चाहिए, जरा इसको मुश्किल हालात से निपटना आ जाए। लेकिन जैसा वक्त होता है फिर वैसे ही अल्लाह हालात डाल देता है। अपनी नानियों और दादियों से पूछ लीजिए, कभी उन्होंने एक पैनी कमा के नहीं दी अपने शौहरों को। आपसे और उन औरतों से ज्यादा राज करती हुई अपने घरों में दिखती हैं जो आज सारा दिन काउंटरों के आगे खड़ी होके शाम को बेचारियां आके फिर घर के काम भी करती हैं। मैं नहीं मना कर रही आपको, ना मुझे हक है ना इसकी जरूरत है, लेकिन इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दें कि पढ़ेंगे तो। और इस तरह से आप देखिए इमाम बुखारी के हालात में जब मैंने पढ़ा कि उनके बाप बहुत दौलत थी उनके पास अपने वक्त में, जब फौत हो गए इमाम बुखारी का माल किधर था? आपने कभी सोचा कि जिनकी सारी जिंदगी इन पे लग जाती है उनको माल कहां से मिलता है? उन्होंने अपने बाप के छोड़े हुए माल को किसी की मुजारबत में लगा दिया, वहां से बस एक फिक्स खर्च, फिक्स अमराज्य की जरूरत के लिए हर महीने आ जाते तो खा लेते थे। जिनको तो अपनी जिंदगी गुजारने के लिए माल चाहिए ना, उनके लिए तो इतना भी बहुत है। और जिनको 3 से 13 और 9 से 99 और 99 से 100 और हर वक्त ये जरबों तकसीम कर दिए ना, उनके तो घर के 2 भी 4 भी कमाने लग जाएंगे तो उनकी बुरी नहीं पड़ेगी। जिस तरह हर चीज की एक हद होती है ना, आप देखिए एक खास उम्र आती है तो हमारा कद बढ़ना रुक जाता है ना, वजन तो हम चाहते हैं रुके लेकिन वक्त का कद तो रुक जाता है, जिसमें फैलना शुरू हो जाता है। दांत हमारे एक खास हद तक आके अब रुके हुए हैं ना, बाल भी रुके हुए हैं, आंखें भी, अब ये तो नहीं हर साल आंखें भी मोटी से मोटी हो रही है। इसी तरह हमारी जहनी इस्तेदाद भी खास हद तक कबूल करती है। इसी तरह हर बंदे को अपनी जिंदगी गुजारने के लिए एक सर्टन लाइन खींचनी पड़ेगी, और आपसे ज्यादा ये आपके मर्दों का काम है। बस मर्द दिन से रात और रात से फिर मिड नाइट और उसके बाद वीकेंड्स पे भी आ जाते हैं काम करने में, और कमा लो, अपने बच्चों को टाइम नहीं देते। बच्चों को आपके माल की भी जरूरत, आपकी भी जरूरत है। कल जब आप बूढ़े होंगे तो डॉलर का पाउंड, डॉलर का नोट आपके पास रखा हो तो वो आपको नहीं खिलाएगा, बच्चे की जरूरत पड़ेगी जो खिलाएगा। इसीलिए असल में ये अगले वक्त अगली आयात की तमहीद बन रही है सारी इस वक्त, कि जितना हम अपने बच्चों को और अपने माल को इस सोच के साथ पालेंगे कि ये अल्लाह की देन है, ये जिम्मेदारी है, जितना इनकी आखिरत बनाने की कोशिश करूंगी उतनी इनकी दुनिया भी अच्छी होती जाएगी, तो आप देखेंगे कि वही होम स्वीट होम बनेंगे। वरना बाप पैसे कमाने की मशीन, ना बेचारे के पास वीकडेज में टाइम, ना वीकेंड पे टाइम। बीवी बच्चे तो दावतें भी खाते हैं, पार्टियों में भी जाते हैं, घूमने भी जाते हैं, लेकिन उन बेचारों को तो जॉब और भी करनी है। कहां कभी किसी काम करने वाले मिजाज वाले मर्द को अपने फारिग बैठे देखा, रिलैक्स मोड में देखा? कम है, बहुत कम है। वो कहते नहीं और कमा ले, अभी और कुछ कर ले, कारोबार तो चलो साथ जॉब शुरू कर लेते हैं, जॉब करते हैं तो साइड बिजनेस शुरू कर लेते हैं, फुल टाइम जॉब थी तो वीकेंड की जॉब कर लेते हैं। वजह क्या कि ये सोच लिया है कि जो माशाल्लाह, अब देखिए माशाल्लाह को लिखिए जरा, और इसके नीचे जरा एक लाइन लिख के अल्लाह के लफ्ज की जगह अपना नाम लिखिए। क्या आज का इंसान ये नहीं सोचता? मुझे तो बोलना भी नहीं अच्छा लग रहा, आप खुद लिख के देख ले, बस लफ्ज अल्लाह के आगे अपना नाम लिख ले, वो होता है जो मैं चाहती हूँ। और बात सुबह ना समझी में हमारे मुंह से लफ्ज निकल जाते हैं, हम तो जो चाहे कर लें, वो तो उनके बाएं हाथ का खेल है, वो तो चुटकियों में कर दें, वो तो यहाँ बैठ के फोन कॉल पे इतने काम करा देते हैं, और इससे वो और उससे वो और उससे वो। ये बहुत ज्यादा इंसान की सोच लेने वाली चीज है। तो लिहाजा अभी तक की बातें क्या सीखी कि तकबुर करना खुद पर जुल्म करना है। उसने खुद को रब का शरीक बना लिया, यहाँ शरीक कौन है? अना आई एम मी। यहाँ कौन सा बुत है, कौन सी कब्र है, या कौन सा आपको दरख्त दिख रहा है जिसको वो को सजदा कर रहा है? अना आई एम। जो फिरौन ने बोला था या शैतान ने बोला था कि अना रब्बुकुम अला, तो इसका शरीक इसका अपना नफ्स है। फिर एक और बात पता चलती है कि बास लोगों को जब दुनिया में बहुत मिल जाता है तो वो ये सोच लेते हैं कि अब हम हर चीज पर कुदरत रखते हैं, लेकिन वो कुदरत तो फिर जाती है जब एक अल्लाह की तरफ से झटका आता है। जिस तरह की थोड़ी थोड़ी करके दुनिया आती है ना, इसी तरह थोड़ी थोड़ी करके निकल भी जाती है, और कुछ की तो झटके में जाती है के साथ ही उनको भी दिल का कोई मर्ज लाहक होता है और वो भी बिस्तर पे हो जाते हैं। इस तरह से ये बात सब दुनिया में आती है। तो याद रखिए कि दुनिया में मिलता है इम्तिहान के लिए, आखिरत में मिलेगा इनाम के लिए। बहुत बड़ा फर्क है दोनों में। फिर दौलत के साथ दिखावा नहीं करना। फिर एक और चीज इसमें हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत है कि मोमिन शख्स उस अमीर बाग वाले से मुतासिर नहीं हुआ, आंखें नहीं खोली उसने, चौड़ी नहीं की। फिर इसके बाद एक और बात पता चलती है कि ये अपने दोस्त को समझा रहा है ना, तो अच्छा दोस्त और अच्छी साथी कौन होती है? जो अपने दोस्त, अपने साथी, अपनी सहेली को समझाए, वास, तबलीग, नसीहत, और समझाए या किसी तरह से ऐसी चीज उस तक पहुंचा दे कि जिससे उसको नसीहत मिल जाए। और फिर आप देखिए कि इससे यह भी पता चलता है कि दोस्तों के ईमान की फिक्र होनी चाहिए, उनके दीन की, ईमान की फिक्र होनी चाहिए। फिर इसके बाद कुछ और उसकी बातें जिसमें मजीद कुछ सबक आएंगे। इन तरह नियाना अकलम इनका मालूम व वलदा, मगर तू मुझे देखता है कि मैं तुमसे माल और औलाद में कमतर हूं, यानी तेरी नजर में मैं कमतर हो सकता हूं, मैं अपनी में नहीं हूं। मेरे दिल का हाल क्या है? आई 40 तो उम्मीद है कि मेरा रब तेरे बाग से ज्यादा बेहतर मुझे दे दे। ये हाईलाइट कीजिए, ये है इसमें सीखने का नुकता कि मोमिन हमेशा अल्लाह से पुरउम्मीद होता है। ये नहीं कह रहा मुझे तेरे जैसा मिल जाए, बल्कि तेरे बाग से भी ज्यादा दे दे। थे कोई इसके पास इस बाग? कुछ भी तो नहीं थे, इस बाग नहीं थे। इसके बावजूद वो ये क्यों कह रहा है, हदीस में खुलासा बता देती है बात का कि अच्छे दिनों का इंतजार इबादत की बेहतरीन किस्म है। एक तो ये जो आज हमारे जहनों पे चल गया ना कि हम इकोनॉमी डूब गई, माल नहीं है, जॉब नहीं है, ले ऑफ है, तो आज का सबक ऐसे तमाम साथियों के लिए जो ये सोचते हैं कि उनके मियाँ की जॉब नहीं है या उनकी पे बहुत कम है या वो गवर्नमेंट से पैसा लेते हैं या गरीब है या हमारे मुल्कों में बेचारे कह रहे दिहाड़ीदार, सब के लिए ये बात बिल्कुल मैं कहती हूँ कि शरह सदर की हो जानी चाहिए। आप देखिए कि आपने सीरत पढ़ी है ना नबी सल्लम की, मक्की दौर भी पढ़ा है, मदनी भी पढ़ा, कहीं ना कहीं से तो थोड़ी बहुत सदनी पढ़ी होगी ना, सब अगर पूरी ना भी पढ़ी हो। आप अल्लाह के नबी का तस्वर करें, इमेजिनेशन में लाए, मक्की दौर या मदनी, कितना को हिस्सा आपको अल्लाह के नबी की जिंदगी के मामूलात का वैसा दिखता है जो आज एक जुबान जदे आम एक किसी भी ब्रदर का, जो उनकी रूटीन लाइफ है, जिस तरह का उनका उठना बैठना चलना, कि अल्लाह के नबी का आपके इमेजिनेशन में वैसा आता है? तड़प फिक्र तो एक ही थी ना पड़ी हुई, अल्लाह के बंदे, अल्लाह का दीन, अल्लाह का पैगाम और अल्लाह की बातें। मक्का में तो आप देखिए कि आपके पास इतने बड़े चैलेंजेस भी नहीं थे, कोई जंग नहीं थी, कोई इस्लामी शरीयत नाफिज नहीं करनी थी, कोई लॉ नहीं बनाना था, कोई डिफेंस का प्रॉब्लम नहीं था। मदीना में जाके तो हाथ वाकई आपके बंद गए थे, इतने काम थे। मक्का में क्या था? ओनली एक काम, अंजिर अशीरतक अलअक्रबीन, पहला हुक्म कुम फानजिर, एक रक बिस्मि रब्बिका। पूरी मक्की जिंदगी का खुलासा देख ले आप, ना तो अल्लाह के नबी किसी से लड़ते दिखते हैं ना झगड़ते दिखते हैं। एक काम करें, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। अब मेरी इस बात को सुन के शायद आप में से कुछ लोगों के दिन में आ रहा हो, अब आज के दौर में तो ऐसे करने लग जाए तो गुजारा ही नहीं होगा। देखिए मेरे आपके एक के करने से नहीं गुजारा होगा, लेकिन अगर सारे मुसलमान ऐसे सोचने लगे तो गुजारा होगा। हम अपने माहौल के गुलाम हैं, अब तो जिसमें हम पिस गए उसमें तो पिस रहे हैं ना, निकलेंगे तो निकलेंगे ना। या ऐसे कि जैसे सब लोग यहां से इकट्ठे निकलना इस हॉल से शुरू करें तो सीढ़ियों में आके सारी फंसेंगे ना, किसी ना किसी को तो प्लानिंग करनी पड़ेगी ना कि अच्छा तरीके से यहां से निकलो। हम सब अपने आप को पहले इस सिस्टम के अंदर डालते हैं, फिर अपने बच्चों को डालते हैं, फिर बेटियों को डालते हैं, और नस्ल दर नस्ल स्लेवरी आज हमारे इर्द गिर्द दिख रही है कि आज के मुसलमान का सबसे बड़ा मसला माल, सर्वाइवल, खाना पीना, रेंट कैसे देंगे, खाएंगे किधर से उधर से। और वही बात है कि जब कश्ती में गए हैं तो फिर तरना तो पड़ेगा ही ना, अब बीच में पांव छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन ये जो जगह होती है ना जिधर मैं और आप इस वक्त बैठे हैं, ये जगह होती है जहां से लोगों को रेस्क्यूज मिलते हैं, जहां से लोगों को एक इमरजेंसी डोर भी दिखाया जाता है। और मैं मानती हूं कि ये एक दिन में नहीं होगा, चले आपकी मेरी जिंदगी में नहीं भी ये काम होगा, लेकिन लोगों को इमरजेंसी डोर्स दिखा के जाएंगे तो हो सकता है कि किसी दौर में मुसलमान इस दुनिया में तब्दीली ले आए। और अगर आप सारे उसी रविश पे चलना चाहते हैं जो वो कर रहे थे तो आप देखिए कि कितनी नस्लें तो हो गई हैं हमारी भी पिसती हुई। तरस आता है बच्चों पे, यकीन करे रहम आता है इनकी जिंदगी। ये तो बच्चे बेचारे जवान नहीं होते, इनके चेहरे पे तफक्कुरात है, वो जो अल्लड़पन आपने अपनी जवानी में देखा था 12, 14, 15, 16, 20 साल की शादी से पहले की जिंदगी अपनी देखे तो फिक्र होती थी आपको, सोते रह रहे हैं तो सोते ही रह रहे हैं, खाते जाए तो खाते रहे, हंसते पाए तो हंसते ही जाए, बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं। इतनी मजे की लोगों की जिंदगियां होती थी, आज दिन ब दिन ये चीजों ने इतना मुश्किल में डाल दिया। और आप देखिए कि इतना ट्रैक है, यानी किसी दुनिया के और मुल्क की बात आपको बताती हूँ कि उन्होंने ये एक मुहिम चलाई, और ये पिछले कहते हैं कि 7-8 साल से चली है, यानी आंखों देखा हाल है लोगों का कि पहले बिल्कुल कुछ नहीं होता था, लेकिन उन्होंने एक मुहिम चलाई कि औरतों को घर से निकालो। ये औरतें घर में रहती हैं तो ये डल हो जाती हैं और ये बेकार हो जाती हैं, और गोया कि जिस मुल्क की आधी आबादी यानी औरतें घरों में बैठी हों तो वो मुल्क तरक्की नहीं करता। बकायदा इन्होंने लोगों के घरों में मैसेजेस दे के फिर औरतों को इतनी ज्यादा मुराद दी उन्होंने कि औरतें घरों से निकले। अब जब औरतें घरों से निकली तो देखा स्किल्स कोई नहीं है पास, किसी को जुबान नहीं आती उस मुल्क की, किसी को कंप्यूटर नहीं आता, किसी को कुछ नहीं आता। तो फिर सेकंड स्टेप पे वो क्या करते हैं कि लोगों को, औरतों को कहते हैं कि घरों से निकलो और पढ़ने आओ। हम तुम्हें कंप्यूटर सिखाएंगे, हम तुम्हें बच्चों को पढ़ाना सिखाएंगे, हम तुम्हें गाड़ी चलाना सिखाएंगे और सर तुम्हें पैसे भी देंगे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा वक्त, और अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यदि सिस्टर्स की कई भी बातें मैं आपको बताती हूँ कि ये बीमारी इस मुल्क में आज से 5-7 साल पहले थी ही नहीं। मजे से हम घर में थे, मर्द कमाते थे और गवर्नमेंट सबका जो भी मामला देखती थी चलता। इन्होंने मुहिम क्या चलाई कि हमारी पाकिस्तानी औरतें भी घरों से निकले। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं फर्स्ट टाइम उस मुल्क में गई जहां की ये बात है, फर्स्ट टाइम मेरा फर्स्ट ट्रिप था, तो उस वक्त सिस्टर्स को मेरी आदत है जहां जाऊं तो पूछती हूँ क्या करती हैं, तो पूरे हॉल में शायद 2-4 सिस्टर्स ने भी नहीं हाथ उठाए कि जो वर्किंग लेडीज हो, सब हाउसवाइफ थी जैसे भी होती हैं। लेकिन हर थोड़े सालों में पहले क्या कहा कि आए हम आपको सिखाते हैं, बस सिखाएंगे, सिर्फ 3 महीने का हमारे साथ कोर्स करो। बड़ी मजे की बात है, एक तो हम समय सिखाएंगे साथ पैसे भी देंगे। वही जुबान सीखने का कोर्स जो नया बंदा जाके करता है 1000 उनको देता है, ये उसके करने के आपको दे रहे हैं। ये एक माया जाल है, उसमें फंसती हैं सिस्टर्स बेचारी। फिर जब उसमें पढ़ती हैं, आप जाहिर है जो आपको 3 महीने कोर्स भी कराएंगे पैसे भी देंगे, तो 3 माह के बाद क्या वो आपको छोड़ देते हैं? मैं तो हमेशा साथी को कहती हूँ ये कैसा फिसलने वाला रास्ता है जिसके लिए आगे लफ्ज जलक आ रहा है, फिसलता है फिर इंसान। फिर वो आपको क्या कहते हैं कि देखें अब आपने ये सीख लिया तो अब आप घर तो नहीं बैठेंगी ना, तो जॉब ढूंढे, तो जॉब नहीं मिलती। वो कहते हैं हम आपके लिए जॉब ढूंढेंगे, पूरा प्रोसेस है उनका। जॉब ढूंढने पे वो लग जाते हैं, आप उनको लिख के दे देते हैं कि हमें नहीं मिल रही, आप ढूंढे। फिर वो पूरे शहर में ढूंढते रहते हैं, जहां की जॉब आती है ना वो आपको फोन करते हैं और आपको आना है। आप नहीं उस जॉब पे आएंगे तो आपके पैसे बंद, वो आपको हाथ दिखा देते हैं और फिर उसके बाद हाथ छोड़ने वाली बात करते हैं। बिलीव मी के इस तरह से 3-4 साल के अंदर वो सिस्टर्स को पूरा फुल टाइम वर्कर बना देते हैं। मैं आपको इसकी 20वीं मिसालें तो दे सकती हूँ। इस तरह से औरतें फिर निकलती हैं कि वो फिर कराती हैं और फिर वो बच्चे भी परेशान है, वो कहते हैं नहीं जो भी है आप निकले वरना हम आपके पैसे बंद कर देंगे। फिर लोग झूठ बोलते हैं, कहीं सिक लीव लेते हैं साल की, प्रेगनेंसी होती है 2 साल की फ्री जॉब मिल जाए। इससे इतनी मसले फैल गए कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह रहम करे हम सबके हाल पे, कि कहते हैं कि आधे से ज्यादा लोगों ने सिक लीव दे के घर बैठे हुए खुद कुछ और साइड बिजनेस कर रहे हैं और गवर्नमेंट से फ्री के पैसे खा रहे हैं। यदि बहुत तकलीफ की बात है, देखिए आप शायद सोचेंगे कि ये बात ज्यादा हो रही है, हम इस पे ना करें तो बेहतर है, लेकिन ये सूरत पढ़ के चले जाएंगे लेकिन इस जाल से नहीं निकलेंगे जिसको आज की तो जालियत आप करते हैं, तो कोई बहुत बिग चेंज नहीं आएगी। यहाँ बैठ के आप 100% कहेंगे ओके ओके, घर जाते ही जब बात करेंगे तो आपके सामने बिल भी होंगे और कईयों को तो खुद अपने मेहनत से सारे अपने बिल देने पड़ते हैं, बहुत बोझ नहीं उठा पाते। तो इसके लिए मजबूत कदम उठाने पड़ते हैं। इस बात का यकीन रखिए कि अल्लाह की जात ने हर बंदे के लिए इंतजाम रखा है। जब हम अल्लाह के रास्तों पे निकलते हैं, अल्लाह के काम करते हैं, अल्लाह ताला हमारा मुआविन बनता है। शर्त यह है कि हमने अपने नस्लों को वही पैगाम दिया हो जो अल्लाह के नबी का पैगाम था। अब आगे थोड़ी सी मजीद इससे बातें सीखेंगे। उस शख्स ने तो कह दिया कि फासा रब्बे यूत यानी खैरम मिन जन्नतिक, और साथ ही साथ सिर्फ उसको वॉर्न करने के लिए, देखिए अगले सब जुमले से पहले मुझे थोड़ी सी तमकीद बांधनी है वरना कुछ लोग मिसअंडरस्टैंड करेंगे इस मुस्लिम ब्रदर को जिसका यहाँ किस्सा है। और वो क्या कि मुसलमान दूसरे का खैरख्वाह होता है, गलत बात नहीं सोचता उसके लिए, लेकिन उसको ये पता होता है कि जो लोगों के रवैये हैं इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। तो उसने खतरा महसूस करते हुए अपने उस अमीर दोस्त के बारे में कहा कि मुझे डर है इस बात का कि वह युरसिला अलैहा हस्बाना मिनस समाई, और वो भेजते इस तेरे बाग पर कोई आफत आसमान से, फिर होगा क्या फतुस भी हसाई नंजलका, तो वो इसको साफ चटियल मैदान कर देगी। यानी ये बाग जिसके ऊपर तू बहुत मान कर रहा है, मुझे तो डर लग रहा है कि आसमान से कोई आफत आएगी। ये तो लफ्ज है ना हस्बान, पत्थरों की बारिश को कहते हैं, हसद पतकंकरी को भी कहते हैं, तो हुस्बान वो बारिश जिसमें पत्थर बरसे, मुराद जहां अजाब है। तो उस भी हमें इस बहस बहा से जलता कहते हैं फिसलने वाली चीज को, स्लिपरी के मानों में इंग्लिश में आप कह सकते हैं, वो पत्थर जिसपे कुछ उगे ना, बहुत चमकता हुआ पत्थर खूबसूरत तो लगता है ना, लेकिन आप देखिए कि अगर आप उसमें उगाने की कोशिश करें तो कुछ नहीं उगता। तो मुराद ये कि ये बाहर चमकता हुआ तेरा बाग है लेकिन बैरन हो जाए, इसमें कुछ दिखे भी ना। और क्या आदेश है I-41 और युस दिखा माँ उहा गौरन, या फिर इसका पानी गहराई में उतर जाए, यानी कुओं का पानी खुश्क हो गया, इस मानी में यानी जिस पानी की वजह से ये बाग इतना सरसब्ज है, अभी ये पानी खत्म हो गया। फलन तस्तती लहू तलबा, तो तुम तो इस पानी को कभी भी हासिल नहीं करोगे। मतलब यह है कि इतना मानना करो, एक वक्त आएगा कि हो सकता है, खतरा है इस बात का कि ये बाग जो है ये बिल्कुल खत्म हो जाए, या तो आसमान से भी आफत आ जाए या पानी नीचे चला जाए, तुम्हारा सारा पानी का निजाम खत्म हो जाए, कुछ भी हो अल्लाह सबब पैदा करेगा और तुम्हारा ये बाग खत्म हो जाएगा और फिर तुम नुकसान में होगे। अब इस आखिरी जुमले को पढ़ने के बाद फिर हम आगे जाएंगे कि क्या इसने उसको बद्दुआ दी है। नंबर एक, क्या उससे जलन हसन है, और क्या हम अपने अमीर रिश्तेदारों के बारे में यही कहें कि देखना एक दिन तुम्हारे कारखाने को आग लग जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। यहां से थोड़ा सा समझ लीजिए मोमिन का किरदार। मोमिन कैयस होता है। कैयस किसको कहते हैं? कयास लफ्ज में रख ले, जीनियस। आने वाले वक्त के खतरे पहले से भाग लेता है। ये जो बातें मैं आपको कह रही थी, जैसे कि पीछे भी बात की है ना कि ये हो रहा है हमारे बच्चों हमारी नस्लों में, तो ये आने वाले खतरे का अलार्म है कि आने वाले दौर में तो मादा प्रसव स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हो सकता है कि शादी हो और मां बनने के सारे जरासीम भी निकलवा दे जिसम से, इस सोच से कि नहीं बच्चे पैदा किए तो औरत को मां नहीं सकेगी। इसकी हल्की भी झलकियां तो आज भी मौजूद है। शादी के बावजूद लोग कहते हैं अभी बच्चे नहीं पैदा करने क्योंकि अभी कमा रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं और अभी जब सारे कामों से फारिग होंगे फिर बच्चे पैदा करेंगे। ये हल्के हल्के इशारे तो मौजूद है। तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि इससे बहुत शरीद, और ये सब कुछ होगा देखिएगा दुनिया में पनपने के नाम पर। तो आने वाले खतरे को इस शख्स ने भांप लिया था। मोमिन को ये पता चल जाता है कि जो शख्स जिस रविश पे चल रहा है ना वही पहुंचेगा। आप नॉर्थ साइड पे जाएंगे तो किधर पहुंचेंगे? नॉर्दर्न एरिया पे पहुंचेंगे। और साउथ साइड पे जाएंगे तो साउथ में पहुंचेंगे। मोमिन को ये समझ आ जाती है कि ये जो इसका लाइफ स्टाइल है ना, ये देखना आखिर में इसको पकड़ेगा। आप इसको ऐसे इमेजिन करें कि आप किसी दूर से जगह से होके आए और आपने देख लिया कि आगे ट्रैफिक ब्लॉक है, बहुत रश है, या सड़क टूटी हुई है, या वहां कोई हादसा हुआ होगा। पीछे आप बीच में यहां आके खड़े हो गए। अब उधर से जो गाड़ियां दन दनाती भी आ रही है उनको तो नहीं बता के जाके हम किधर जाएंगे। आप उस वक्त क्या सोचते हैं? ये अभी तो 60 की स्पीड पे गया ना, देखना 1 किलोमीटर के बाद इसकी गाड़ी 20 पे चली जानी है। फिर आप उसको हाथ रोक के अगर कहते हैं कि रुको जरा हल्का करो, देखो इधर ना जाओ, ये रास्ता ब्लॉक हो रहा है, तुम साइड पे चले जाओ। ये खैर ख्वाही है, अद्दीन नसीहा, ये इसकी सरासर खैर ख्वाही है कि पहले तो उसको अल्लाह की तरफ जोड़ रहा है कि माशाल्लाह को, और अब उसको उसके बुरे बुरे आमाल के खतरे से आगाह कर रहा है कि तुम ये जो कुछ कर रहे हो ये सिर्फ एक ख्वाबों का शीश महल है, एक हल्के से झटके से चिकना चूर होगा। और ऐसे ही हुआ। अगली आयत देख ले 42, वो ही तभी समरी ही, और इसका सारा फल समेट लिया गया। अल्लाह को कोई देर लगती है? एक आंधी आई होगी, उसने उसके सारे फल को यूं इकट्ठा करके कूड़े के ढेर पे जमा कर दिया होगा सब। ये लफ्ज वो ही तो बहुत मीनिंगफुल है। समेट लिया गया, सारा समेट के एक तरफ कर दिया, बाग उजड़ गया, औलाद छिन गई। इससे पता चलता ना कि ये दूसरा शख्स अल्लाह का मुकर्रब था, क्योंकि मालदार ने तो उसको ताना दिया था ना कि अना अक्सर उमिन का मालम वाजु नफरा, लेकिन उस नेक बंदे का दिल दुखा और जिसकी सजा फौरी तौर पर उसको मिली। कहते हैं कि इसको ये सजा क्यों मिली? कि इसने अल्लाह के एक नेक बंदे का दिल तोड़ दिया। हदीसे कुदसी में आता है, मनाद अली वलीयन, जिसने मेरे किसी वली से मेरे दोस्त से दुश्मनी की, फकत आजंत हो बिल हरबी, तो उसको मेरी तरफ से जंग की खबर दे दो, यानी ऐलान जंग है उसके लिए। तो कभी किसी का दिल नहीं तोड़ना, अपनी बड़ाई में पढ़कर किसी को दुखी ना करें। एक शेर भी है फारसी का कि जिसका खुलासा के कि जब अल्लाह के किसी दोस्त के दिल को ठेस पहुंचती है तो अल्लाह उसके बदले में पूरी कौम को गिरफ्त में ले आता है। और उसका हाल फिर क्या हुआ? फस बहुकान पकपी, हाँ तो वो हाथ मलता रह के इस पर जो कुछ उसने उसमें खर्च किया था, यानी असल रास भी लूट डूब गए, कैपिटल ऑफ मनी भी डूब गया, असल भी गया, बहुत माल लगा हुआ था, वक्त था, मेहनत थी, सारी जिंदगी का सरमाया था, सब डूब गया। बाग का हाल क्या था? बग यखावियतुनलाउशी, हाँ, और वो बाग अपनी छतरियों पर गिरा पड़ा था। आपको पता ना कि खजूरों की जो बेलें होती हैं उसको बाद में लोग ऊपर करके तो बांध के छत सी बना लेते हैं, उसको जहन में ले आए कि वो सब बेलें जो थी वो नीचे पड़ी नहीं थी। ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. اور وہ کہہ رہا تھا ہائے میری شامت، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. اب سمجھ آیا شرک کون تھا، کس کا شرک تھا. اب اس کو احساس ہوا، اسی ایک مکالمے سے سمجھ آ گئی کہ اللہ کے اختیار کو بھلا کر ظاہری اسباب اور مادی وسائل پہ توکل کیا، یہ تھا وہ شرک جس کا آج وہ اعتراف کر رہا ہے. اور آج کی مادہ پرستانہ ذہنیت کا مکمل نقشہ، یہ شرک جدیدہ ہے، نئی قسم کا شرک ہے. یہ شرک ہر طور میں رواج بدلتا ہے، رسم بدلتا ہے، شکل بدلتا ہے، تو آج کا شرک بھی یہی ہے. اور جب دیکھیے مشکل پڑی تو وَلَمْ تَكُلْ لَهُ فِيَتُ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہ ہوئی کوئی اس کے لیے جماعت جو اس کی مدد کرتی اللہ کے مقابلے میں. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ ہی وہ رہا انتقام لینے والوں میں، خود نہ کسی کا انتقام لے سکا. یہ جو لفظ ہے نا انتصر، نصر سے یہ نصر کہتے ہیں عام مدد کو، لیکن جب اس میں تال لگ گئی انتصر تو ظلم سے بچانا، بدلہ لینے کے معنوں میں، ریونج کے معنوں میں. وہ کدھر کے سارے جو اس کی دور، جس کے یہ گنگا رہا تھا کہ میری نفری بھی بہت ہے تو مال بہت ہے، وہ سب چلے گئے. تو جب مال جاتا نا تو مال کی وجہ سے بننے والے لوگ، دوست اور رشتے دار ہیں، وہ بھی چلے جاتے ہیں. اور ہوا کیا، اس کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہنالک الولایۃ للہ الحق، یا تو تمام اختیار اللہ کا ہے جو الحق ہے. یہ لفظ جو ولایت ہے اس کا روٹ کیا ہوگا؟ وولام یاسجی شاور، جیسے ولی کا لفظ ہم پڑھتے ہیں وہی لفظ ہے. ولایت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اختیار. والی کہتے ہیں کسی ملک اور علاقے کے مالک یا حکمران کو. اور وا پہ زبر ہوگی نا، دیکھیے ولایت نہیں ہے، وا پہ زبر ہے، وا کی زبر کے ساتھ ہے، تو یہاں مراد ہے اقتدار اور اختیار. یہ لفظ کبھی آپ نے اردو میں سنا؟ آج کل جو ہم یار آپ بیٹھے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم بیٹھے ہیں یورپ میں، یو کے میں، اور کیا کہتے ہیں لندن. پہلے دور کے لوگ کیا کہتے تھے؟ وہ صحیح بول رہی ہے، ولایت. پہلے دور میں کہتے تھے وہ ولایت، یہ وہی لفظ ہے. اس دور میں چونکہ برٹش امپائر کی دھاک تھی، آج بھی ویسے ماشاء اللہ پڑی ہے، آج بھی ہم نے ان کے غلبہ مانا ہے، تو یہی ولایت بولتے تھے کہ وہ مطلب ولایتوں کے، مطلب اب جن کا اختیار ہے ہم پہ، ان کے پاس گیا. اور آپ دیکھیے اس لفظ ولی سے بہت کچھ بنتا ہے، دوست اور پشت پناہ. اور جب واؤ کی زیر ہوگی نا ولایت، تو پھر اس سے مراد دوستی اور محبت ہوگی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور، میں یہ لفظ گزرا ہے سورہ بقرہ 257، اور اسی طرح سورہ یونس 62، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو گویا کہ سمجھ آ گئی کہ اختیار اللہ خیر ثواب و خیر نصیحت حاصل ہو گئی. اب یہاں یہ قصہ تو ختم ہوا، اس کا اصل جو سکھانا تھا وہ اگلے حصے میں آئے گا، لیکن ہم اس پہ چند لفظ ضرور سیکھیں گے اپنے لیے بھی. پہلی بات یہ کہ یہ شخص مسلمان تھا، لیکن مال اور دولت کے نشے میں بہک گیا تھا. جب دولت گئی تو اس کو بات سمجھ آ گئی. ادھر سے عمل کی ایک بات تو لکھیے کہ بعض دفعہ دنیا کی دولت اور دنیا کی صحت اور مال اور اولاد چلا جاتا ہے، لیکن ایمان کی دولت مل جاتی ہے. بڑے خوبصورت ایک کال کسی نے مجھے چند دن پہلے بھیجا کہ دنیا کی دولت اور ایمان کی دولت جتنی جتنی بڑھتی ہے اتنی راتوں کی نیند کم ہو جاتی ہے. بات بنتی ہے کچھ؟ پہلے کی دنیا کے بڑھنے سے راتوں کی نیند کیوں جاتی ہے؟ اور کمانا، اور ایمان کی دولت آئے تو تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، پھر اللہ کو منانے میں، اللہ سے باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے. اور خفیہ کام تو راتوں کو ہی ہوتے ہیں نا، ایمان کی دولت والا راتوں کو اپنے رب سے باتیں کرتا ہے. اور آپ یہ مضمون قرآن پاک میں کئی جگہ پڑھیں گے کہ جہاں لوگوں کو یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں. پھر دوسری بات اس میں تھوڑی سی کرنے کی، جو بیچ میں نے نہیں روکنا مناسب سمجھا، لفظ ماشاء اللہ. اس کے بارے میں پہلی بات دیکھیے کہ میں نے آپ کو اشارتاً بتا دیا تھا کہ بچوں کو اس کی عادت ڈالنے سے زیادہ بچوں کا عقیدہ بنائے. بیٹا جو ملتا ہے اللہ سے ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ दूसरी बात यह है कि माशाल्लाह कहने को मजाक ना बनाए, माशा इसके कहने की टोन भी कुछ होती है ना जी, माशाल्लाह इस तरह की टोन ना इस्तेमाल करें। फिर बस सलफ कहते हैं कि अपनी औलाद या माल या उनका कोई हाल पसंद आए तो यह कलमा पढ़ लो। मुसनद अहमद की रिवायत है, क्या मैं तुम्हें जन्नत का एक खजाना ना बताऊं, वो खजाना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना। रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे इस बंदे ने मान लिया और अपना मामला मेरे सुपुर्द कर दिया। हजरत अबू हुरैरा से फिर पूछा गया तो आपने फरमाया सिर्फ ला हौला नहीं बल्कि जो सूरह काहफ में यानी माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी पूरा इकट्ठा कहना चाहिए। तो माशाल्लाह कहने को अच्छी तरह से अपनी जिंदगी में रखें और इसको सही तौर पे इस्तेमाल करें। कुछ लोग इंशाल्लाह और माशाल्लाह का फर्क नहीं कर पाते, इंशाल्लाह की जगह माशाल्लाह और माशाल्लाह की जगह इंशाल्लाह, इसे रोके। दूसरी बात यहाँ एक और पता चलती है और वो क्या है कि जिस तरह फिरौन को डूबते हुए ईमान मिला था, इसी तरह बास दफा इंसान का जब सब कुछ डूब जाता है अगर जिंदगी के अंदर ही ये काम हो जाए तो खुशकिस्मती है। इससे पहले कि मौत का नकारा बच जाए तो फिर इंसान उस वक्त अपने ऊपर ले। फिर इसी तरह आप देखिए कि इसमें से एक चीज जो हमें अपने लिए और भी समझनी है और वो क्या है कि जो चीज आपके अपने इख्तियार में ना हो वो आपकी अपनी नहीं होती। इसके लिए अब अगली आयतों को हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे लेकिन पहले ब्रेक लेंगे और बहुत ही खूबसूरत सबक है बाकी आप तो सालेहात वाला, तो क्विकली 20 मिनट ले लीजिए पूरे ब्रेक ले लें और फिर इंजॉय करके खाना पीना वापस आए। और आज चूंकि नमाज का वक्त शुरू हो गया तो मुझे इस्तेमाल यह कि आप फिर नमाज शुरू करते हैं ना तो उससे फिर बाकी सारे काम रुक जाते हैं। कोशिश कीजिए जिस वक्त पे जो बात बेहतर हो वही करें, ब्रेक लीजिए और इंशाल्लाह नमाज और क्लास के अंदर करेंगे। जज़ाकअल्लाह खैर। अपनी फीलिंग्स को शेयरिंग है तो लिख के दे दें। हाँ जी